जिनेंद्र भगवान की वाणी में चारों ही अनुयोगों द्वारा उपदेश हमें प्राप्त है, जिनके नाम है प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। उनमें से यहाँ भी हम आज करणानुयोग के माध्यम से कुछ विषयों को देखेंगे। तो ये अनुयोग क्या होता है हमने देखा था। प्रथमानुयोग में तो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के कथाएं, यानी जो हो चुकी है, उन्होंने कैसे कैसे उनके जीवन में प्रसंग बने थे, कैसे कैसे तत्व ज्ञान सीख कर उसको अपना कर उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की और किस तरह से उन्हें स्वर्गों की या मोक्ष की प्राप्ति कर दी, इसका वर्णन आता है। फिर करणानुयोग में तो सूक्ष्म वर्णन होता है, वहां त्रिलोक की रचना बताई जाती है, कहां क्या है पूरे ही विश्व की, उसमें कहां स्वर्ग है, कहां नरक है, कहां कौन से जीव रहते हैं, कौन सी परिस्थिति में रहते हैं, कौन से भावों के कारण कहां कहां जन्म लेते हैं, आदि सभी बातें हैं। उसमें त्रिलोक की रचना का भी वर्णन है, कर्मों का भी वर्णन है जो हमें दिखाई नहीं देते परंतु जिनका कार्य हमें अनुमान से ख्याल में आता है। इसका अर्थ क्या, अनुमान से ख्याल में आता है नहीं क्या? हम कहते हैं एक ही घर में चार बच्चे जन्मे हैं, चारों को तो माता पिता तो समान ही भी उनके साथ सब चीजें उनको उपलब्ध कराते हैं, उसमें से भी कोई इंटेलिजेंट है, कोई मतिमंद भी है, कोई निरोगी है, कोई जन्म से ही कोई बीमारी लेकर आता है, आगे भी जाकर कोई गरीब रहता है, कोई श्रीमंत हो जाता है, उसमें भी बहुत सारे कोई बहुत बीमार रहता है। तो ये सारी ऐसी बातें क्यों होती है, कोई पंचेंद्रिय और कोई एकेंद्रिय, इतनी वेरिएशन क्यों है? तो ये सारे जो कर्म के निमित्त उसमें बताए जाते हैं, तो कर्म है ये अनुमान से जाना जाता है। ये कर्मों की भी अवस्थाएं जो होती रहती है, जो जिनेंद्र भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा जानकर बताई है, क्योंकि हमें तो मैं मनुष्य हूं इतना ही हमने समझा है, परंतु हमारा अस्तित्व इससे भिन्न है और यहां इसमें एक मनुष्य में क्या क्या है। तो मैं एक स्वयं जीव हूं, अनंत कर्म है और शरीर के भी अनंत अनंत परमाणु है। तो इसमें से हमें अपना स्वरूप जानने के लिए, जीव का स्वरूप यानी अपना स्वरूप जानना तो जरूरी है ही है, परंतु जो मैं नहीं हूं ऐसे जो कर्म और शरीर है उसका भी स्वरूप जानना आवश्यक है। जैसे हम यहां आए बाहर से तो सभी बिल्डिंगें एक जैसी दिखती है ना, आपके घर जहां है वहां भी सभी हमें तो वहां से इंडिया से आते तो सब एक जैसा ही दिखता है। तो अपना घर कौन सा है ये भी निश्चित करना चाहिए वैसे ही दूसरे जो घर है वो मेरे नहीं है ये भी निश्चित करना चाहिए। इसलिए स्व को जानना है, स्व में एकाग्र होने के लिए, आश्रय करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए, और पर को इसलिए जानना है कि ये पर रूप मैं नहीं हूं ये निश्चित करने के लिए। तो ये कर्म के उदय में कैसी परिस्थिति होती है, क्या क्या बातें बनती है, जीव को कैसा इसका फल मिलता है, उसमें से छूटने का कुछ मार्ग है या नहीं, होना तो चाहिए क्योंकि आज तक अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं। तो जो बात अनंत जीव जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उस मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वह बात हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हम में कैपेसिटी है, हर जीव में कैपेसिटी है परमात्मा बनने की, और हर जीव परमात्मा बन सकता है। यह हमें करणानुयोग सभी अनुयोगों के द्वारा हमें यही बात जानी। चरणानुयोग में भी जो आचरण की मुख्यता से कथन होता है, और द्रव्यानुयोग में सिद्धांत बताए जाते हैं, रियालिटी बताई जाती है। एक होता है उपचार कथन, निमित्त के द्वारा जो कथन किया जाता है, जैसे कर्म आदि ने जीव को रखड़ाया ऐसा कहेंगे, ये निमित्त का कथन हुआ। तो रियालिटी क्या है, तो इस विश्व में जो छह द्रव्य है उनकी अपनी अपनी पर्याय अपने से होती है। इस रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम पर से ही मेरा कुछ ना कुछ भला बुरा होता ऐसा मानते रहते हैं, या तो संयोगों को पलटाने की हम कोशिश करते रहते हैं, या मानते हैं कि कर्म ने हमको बहुत सताया है और हम कर्म को कैसे हटाए, तो जो कुछ बातें बताते हैं, नहीं कर्म को ये करने के लिए ये बातें कर दो, तो हम करते रहते हैं, परंतु वो सही उपाय है या नहीं इसका विचार नहीं करते। हमें कोई बीमारी होती है तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर करे जाते उसके पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो हिंदुस्तान में रास्ते पर भी कोई बैठते वैद्य जिसको कहते उनके पास तो नहीं जाते। क्यों क्यों नहीं जाते, क्योंकि सही इलाज करना है। ऐसे ही हमें अगर सही इलाज करना है तो जो सही ईश्वर है, जो सच्चे ईश्वर है, सच्चे गुरु है, सच्चा उपदेश है, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। हम तो यहाँ भी कर्मानुयोग की बातें आगे चलाएंगे। कर्म तो हमने देखे नहीं है, परंतु भगवान ने उनको देखकर यानी जानकर उसका स्वरूप बताया है, और उसके आधार से हम भी उसका स्वरूप देखेंगे तो हमें भी यह उस बात की पता चलेगी उसकी। जब हम कर्म कहते हैं तो कर्म है क्या, तो एक वो पुद्गल है। कल हमने ये जो स्कंध देखे थे, जो सूक्ष्म स्कंध है, स्कंध ने अनेक परमाणुओं का जो कोई एक गठ्ठा बन गया है उसको हम स्कंध कहेंगे। तो वहां तो अनंतानंत कर्म पार्टिकल्स होते हैं, उसके द्वारा कर्म बनता है। ये कर्म के दो प्रकार है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म के भी नाम आपने पहले सुने होंगे, जो हमने पहले पढ़ा है उसको छोड़कर अभी हम थोड़ा नया विषय आज लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ नए भी बहुत लोग आए हैं, जो हमारी बात कंटिन्यूटी में चली थी उसको छोड़कर हम आज ये विग्रह गति वाला यहाँ विषय लेने वाले हैं। ये विग्रह गति क्या होती है और वो सब हम देखेंगे। ये मैं आज तीसरे नंबर का चैप्टर देख, जिसके पास पुस्तक है वो देखना जरूर, जिनके पास नहीं तो दो दो में एक एक लेना, या फिर सुनना, सुनने से भी ख्याल में आए ऐसी बात है। जो कुछ नए नाम है वो तो हमने यहाँ लिख दिए हैं, देखो अभी हम देखते हैं इसको। कर्म के बंध हृदय की यह कथा, मिलन आपको 19 पेज है मेरे हिंदी में, गुजराती कितनी 18 पेज। कर्म के बंध हृदय की यह कथा, कर्म का बंध होना यानी जीव हर समय मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, तो नया नया कर्म आकर पुराने कर्मों में जुट जाता, और उसी समय पुराने कर्मों में से जिनका जिनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, स्थिति पूरी हुई है, वो कर्म झड़ जाते हैं। ऐसा हर समय चलता है, नए आते हैं, पुराने में से कुछ झड़ जाते हैं, और ये बात चलती रहती है। तो जो नए आते हैं उसको कहेंगे बंध, और जो पुराने निकल जाते हैं उसको कहेंगे उदय, और जो जीव के साथ सत्ता में पड़े रहते बंधने के बाद उनको कहेंगे सत्ता। तो कहते कर्म के बंध और उदय की यह कथा सुरस और चमत्कारिक प्रतीत होती है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि कर्म बंधने के बाद वो सत्ता में पड़ा रहता है, फिर उसकी कैसी निषेक रचना होती है, उसमें कितने परमाणु गिरते हैं, उसकी भी बात हम देखेंगे। तो ये कथा तो सुनने में बहुत ऐसे अद्भुत, जैसे हम रहस्य कथा नॉवेल पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कर्म की कैसी बातें हैं, उसका भय भी लगता है ऐसा तुम्हारा कहना है, क्योंकि अरे हमने कितने कर्म बांधे हो गए अभी तक, वो क्या करेंगे अभी, वो कैसे निकलेंगे, बहुत डर लगता है। इसमें भय का कोई कारण ही नहीं है। जिस तरह अंधेरे कमरे में जाने से बालक डरता है, परंतु उस कमरे में दीपक जलाकर प्रकाशित करने पर वो बालक डरता नहीं, उसका भय निकल जाता है, क्योंकि उसको सारी स्पष्ट चीजें दिखती हैं, तो उसको कहीं उसमें डरावना कुछ नहीं लगता है। अननोन किसी जगह में जाना है तो अंधेरा है तो वह नहीं जाएगा बालक, हम लाइट ऑन कर देते तो वहां कोई डर नहीं रहता। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा समस्त वस्तु व्यवस्था जानकर, ये वस्तु और व्यवस्था क्या होती है, वस्तु यानी द्रव्य, इस विश्व में कितने द्रव्य है मालूम है आपको, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनकी व्यवस्था का अर्थ है वो अनादि से अनंत काल तक कायम टिके रहते हैं अपने स्वयं शक्ति के कारण। तो जीव भी अनादि से टिका हुआ है, मैटर यानी पुद्गल भी अनादि से टिका हुआ है, और अन्य द्रव्य भी अनादि से टिके हुए हैं अपने स्वयं की शक्ति के कारण। वो कौन सी शक्तियां हैं वो अभी हम सिद्धांत प्रवेशिका में देखेंगे, और वो टिके हुए पलटने का कार्य भी हर समय चलता है। क्या कह रहे, वस्तु कायम रहकर कायम पलटती रहती है, इट ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म, लिखा है ना, हमने वो तो सच माना, सभी द्रव्यों में यही बात होती है। तो कायम टिकना ये भी वस्तु का स्वभाव है स्वयं का, वो अपने से टिकी हुई है, कोई ईश्वर ने उसको टिकाया नहीं है, और कायम पलटती है वो भी अपने से पलटती है, निमित्त के कारण नहीं पलटती, इसको कहेंगे वस्तु व्यवस्था। प्रत्येक द्रव्य सेल्फ सफिशियंट है, उसके लिए दूसरा कोई आवे और उसको परिणमावे, थोड़ा धक्का स्टार्ट करावे, हैंडल मारे, ऐसा कुछ नहीं है। तो व्यवस्था जानकर छहों द्रव्यों का स्वरूप बतलाया है, और उन्होंने जो बतलाया है, आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की, और वो ग्रंथों के द्वारा आज भी वह उपदेश हमें उपलब्ध है। इस आगम के प्रकाश में जीव, कर्म, नौकर्म यानी शरीर, मन, वाणी, इनका स्वरूप वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये शरीर की रचना कैसी होती है, ये कर्म कैसे जीव बांधता है, और उस कर्म के उदय में कैसे कैसे अलग अलग उसको फल मिलते हैं, ये हमारा शरीर ऐसा ही क्यों होता है, देवों का वैकल्प क्यों होता है, ये सारी बातें, जीव मरने के पश्चात उसका क्या होता होगा, कितने दिन तक हमारे आसपास वो घूमता रहता होगा, ऐसे चलती है ना कल्पना, कितने समय तक, ये सभी बातें हमें भगवान के ज्ञान द्वारा जो जानी हुई बातें हमें ग्रंथों में उपलब्ध है, हम वहां से जान सकते हैं। तो ये सारा स्पष्ट रूप से अपने ख्याल में आने पर स्वयं के भिन्न चैतन्यमय अस्तित्व का भान हमें होता है। क्या कहते हैं, अभी तक हमने अपने को भिन्न नहीं पहचाना, यहां तो एक जीव द्रव्य कैसा है, चेतना गुण का धारी, अरूपी, असंख्यात प्रदेशी और एक है, और दूसरा यहां क्या क्या है, अनंत पुद्गल परमाणु है, जिसको हम कर्म भी कहेंगे, अन्य तेजस शरीर भी है, ये औदारिक शरीर जो है ना बाहर ये दिख रहा है वो तो औदारिक शरीर है, ये सारे अनंतानंत पुद्गल परमाणु है। वो कैसे है, मैं तो चैतन्य हूं जानने वाला, और ये कैसे है, शरीर में ज्ञान है कि नहीं भाई, आप क्या कहते हैं, नहीं हम भाई साहब से पूछते हैं, हमारे नए मेंबर है ना आज, हाँ बेटा इसका क्या नाम है, हाँ आप हिंदी समझते हो, शरीर जानता है क्या, आप जानते हो, हाँ आप जानते हो, जैसे ये शरीर का अंग है बाल, तो बाल काटते हैं तो दुखता है ना, थोड़ा दर्द होता है ना, व्हेन यू कट योर नेल्स, नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। और यहां आपको दर्द होता है तो शरीर को होता है क्या? आत्मा जानता है, आत्मा जानने वाला तो आत्मा है ना, परंतु जहां आत्मा है वहीं पर शरीर है, तो हमें ऐसा लगता है कि शरीर ही जानने का कार्य करता है। जहां आत्मा प्रदेश नहीं है वहां जानने का कार्य नहीं होता, तो जानने वाले तो हम हैं। और ये शरीर कैसा है? तो अचेतन है, ज्ञान रहित है, वो कुछ नहीं जानता है। और कैसा है? रूपी है। रूपी का अर्थ क्या है? स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त है। ये गर्म कौन होता है? हल्का भारी रूखा चिकना किसकी पर्याय है? पुद्गल की। तो जो गर्म होता है, ठंडा होता है, जो मुलायम है, जो रफ है, वो क्या है? सारा पुद्गल है। अभी हमने देखा था ना, यहां दो वस्तुएं हैं, एक जीव है और एक शरीर है। यहां जानने का कार्य कौन कर रहा है? जीव। और गर्म होने का कार्य कौन कर रहा है? शरीर। हम क्या, मुझे बुखार आया, कहने की बात नहीं है, अभिप्राय की बात है। हम ऐसे समझते ना, तो ये काला हो गया, मैं काला हो गया। काला ये कौन से गुण की पर्याय है और किस द्रव्य की है? बोलो। अभी काला कल आपने सब सीखा है। हाँ बेन, काला गोरा कौन से गुण की पर्याय है? बोलो जैना बेन। हाँ, वर्ण गुण की। कौन से द्रव्य की? पुद्गल द्रव्य। हमें जो कुछ दिखाई देता है उसका ऐसा हम डिसेक्शन करेंगे। ये काला जो है ना, वो काला है वर्ण गुण की पर्याय है। वर्ण गुण किसका है? पुद्गल का। तो ये पुद्गल है तो मैं नहीं हो सकता। यह जो जानने का कार्य है वह मैं हूं। अभी किसी को कुछ हुआ, कट हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो क्या है? बहुत दर्द है, बहुत दर्द, चिल्लाता है। तो ये कट क्या गया? आत्मा कट जाता है क्या? नहीं जाता। तो वो तो पुद्गल है। जानने वाला कौन है? जीव है। ऐसा हम उसमें अगर भेद ज्ञान भी करेंगे ना, तो देखो आपका जादू जैसा वो दर्द कम हो जाएगा आपके। तो यहां हम क्या कहते हैं कि शरीर का और जीव का एक ही जगह दोनों रहते हैं, तो दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव की भी अवस्था अपने से होती है और पुद्गल की अवस्था उसके अपने से होती है। दोनों की एक साथ होती है तो हमें लगता है जीव ने शरीर का कार्य किया या शरीर ने जीव का कुछ किया। यह हमारी भ्रमणा है, हमें लगता है, हमें भासित होता है। हम ट्रेन में बैठते हैं और दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, हमें क्या लगता है? हम ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर दूसरी ओर देखते थे, अरे स्टेशन पर ही खड़े होता है कि नहीं? आपने सबने ऐसा अनुभव लिया होगा। ये हमें भासित होता है मगर वो सच है कि नहीं वो हमको जांचना है। तो यहां मैं हूं जीव और यहीं पर शरीर है। मेरी भी अवस्था हो रही है और शरीर की भी हो रही है। दोनों की एक साथ अवस्था होती है तो हमें लगता है मैंने शरीर की अवस्था की और शरीर ने मेरी की। परंतु मैं और शरीर ऐसे दो बातें भी नहीं उसको भासित होती। उसको लगता है कि ये दोनों मिलकर ही मैं हूं, शरीर से भिन्न मैं हूं। ये बात उसको आज तक पता नहीं, कभी सुनी नहीं है। सुनी है तो उस पर विश्वास नहीं किया। तो कहते हैं ये जो उनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, कर्म के कारण जो कोई बातें बनती है, शरीर के कारण जो कोई बातें बनती है, उसकी जो अनेक अवस्था होती, विविध अनेक प्रकार की अवस्था होती है, उनका अगर हमें बराबर ख्याल आ जाए, उसका ज्ञान हो जाए, तो मैं स्वयं भिन्न हूं और ज्ञानमय हूं, चैतन्यमय हूं, इस बात का पता चलता है। और कर्म संबंधी जो अपना भय है वो निकल जाता है। अभी इस अवस्था में क्या लगता है? अरे रे, मैंने कैसे पाप किए होंगे, या इस भव में या पूर्व भव में मैंने कैसे कैसे आकरे कर्म बांधे हैं, कहते हैं ना, तो अभी मेरा क्या होगा, इस कर्म को मुझे काटना है। ऐसे ही जीव की, क्योंकि भय लगता है ना, तो मुझे कर्म को काटना है। क्यों? हमने शास्त्र में सुना है कि जो चार घाती कर्मों का अभाव करके अरिहंत हुए और चार अघाती बाकी है उसका भी नाश करता जीव सिद्ध हो गए, तो मुझे भी कर्मों का अभाव करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं? हाँ बेन, आप क्या क्या करते हैं? हमने सुना तो है ना, ये क्या क्या मानते हैं लोग। आप कुछ करते हैं नहीं करते वो बात भूल जाओ, लोग क्या क्या करना चाहते हैं। हाँ बोलो बेन, आप बोलो। पीछे, हाँ हाँ अभी को पूछ रही हूँ मैं, आपके पीछे पीछे, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, लोग क्या क्या करना चाहते, कर्म को काटना है ना। अच्छा, खुदे को गुरु में भी जाते हैं या सच्चे देव गुरु के भी शरण जाते हैं और बोलते हैं हमारे कर्म हट जाए, और कर्म हटाने के लिए कुछ क्रिया भी करते हैं और मानते भी है कि हम इससे कर्म को हटाएंगे, क्योंकि सुना है शास्त्र में कि ऐसा करने से निर्जरा होती है, परंतु उसके सही अर्थ मालूम नहीं होते हैं। और जैसे व्यापार में क्या व्यापार कर रहे हैं, कितना जमा हो रहा है, कितना खर्चा, इसका तो बराबर ख्याल रखते हैं, और हम हमें मुनाफा हो रहा है कि नहीं इसका बराबर हम हिसाब भी करते हैं, और साल में एक बार करते कि नहीं करते, परंतु यहाँ हम क्या करते हैं उसका ही पता नहीं है। या हम सब नफा चल रहा है कि टोटा, इस बात का पता नहीं हमारे, और बस हम एक दूसरे की देखा देखी बातें करते। हमें तो यहाँ बिल्कुल साइंटिफिकली देखना है कि क्या बात है। दिस इज अ साइंस, वितराग विज्ञान कहते इसको, ये साइंस है, वितराग होने का साइंस भगवान ने बताया है। वे स्वयं वितरागी हुए हैं और वो कैसे पैदा करना उसका साइंस बताया, और वो चार अनुयोग में है, उसमें से हम कर्म की थियोरी के द्वारा इसकी बात देखें। एक बात है कि कर्म का बंध हर समय होता है, जिसको कहते हैं निरंतर होता है। हमने देखा था कि आयु का बंध कभी कभी होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, परंतु अन्य कर्मों का बंध निरंतर होता है। तो कितने कर्मों का, तो सात कर्मों का। हम अभी समझने के लिए आठों कर्मों ले लेते हैं, क्योंकि आयु भी कभी बनती है तभी आठों बनते हैं। इसमें से चार तो घाती है और चार अघाती है। घाती यानी जीव के गुणों में वो कोई घात होता है, जीव का ज्ञान फुल प्रकट नहीं होता। हमारा स्वभाव तो केवल ज्ञान प्रकट करने का, परंतु पर्याय में अभी हम हीन ज्ञान रूप है, थोड़ा अल्प ज्ञानी है। तो यहाँ जो ये घात हो रहा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी अंतराय, ये चार घाती कर्म है, और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रीय अघाती। तो इन सबका बंध हर समय होता है, इसको कहेंगे निरंतर होता है। ये आयु कभी कभी बंधेगी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये बंध तो निरंतर होता है, कभी जागृत अवस्था में और सोए हो तो तभी होता है, और कोई कोमा में गया हो तो तभी होता है।
अच्छा,
हाँ वही तो मैं पूछती हूँ, कोमा में कैसा होता होगा, आप क्या कहते भाई साहब, कोमा में होता होगा कि नहीं होगा कर्म का बंध? वहां तो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करता है ना। अब हम पूछते हैं, हम कोमा वाले की बाजू जला अलग रखते हैं, ये बाहर आपको यहाँ कोई वनस्पति दिखती है ना, उनको कर्म का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा, आप क्या कहती है? कर्म का बंध नहीं है ना, वो भी तरह की हो गए ना। यू कांट, सो यू शुड थिंक ओवर इट। क्योंकि क्या है, हमने क्या देखा, जो संसारी जीव है, अभी अरहंतों को भी हम अलग बात रखेंगे, मुनियों की बात अलग रखेंगे, पहले में पहले हम ऑर्डिनरी आम जनता की बात करेंगे। तो ये सारे जीव कौन कौन से पर्याय में, कोई एक इंद्रिय, कोई दो इंद्रिय वाले, कोई तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले, पंच इंद्रिय है, ये सारे जीव उस पर्याय में है, जन्म मरण करते 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 एक में से दूसरे पर्याय में चलते रहते हैं। कभी मनुष्य हुआ, कभी पशु हुआ, कभी ये पेड़ पौधे भी हो गए। तो क्यों होते हैं ऐसा, पर्याय ऐसे अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि हम अलग अलग भाव करते हैं, परिणाम करते हैं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, उसमें भी कभी पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं। तो हर समय जो कोई परिणाम होता है उस जाति के, वैसे वैसे यथा योग्य ऑटोमेटिक कर्म परमाणु बनते हैं, उसमें विशिष्ट फल देने की शक्ति होती है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन है, तो उसके फलस्वरूप फिर वैसे वैसे उसको पर्याय प्राप्त होती है, उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो ये परिणाम कब करता है, ये परिणाम जो होते हैं, क्रोध मान माया लोभ कहो या शुभ अशुभ भाव कहो, अब जो यहाँ पढ़े ना, तो वो कौन से गुण की पर्याय है, सीजे साहब आप कहेंगे, आपने समझा, राग द्वेष जिसको हम कहेंगे, जिसको हम कहेंगे शुभ अशुभ भाव कहो, राग द्वेष के परिणाम कहो, कौन कहना चाहता है आपके? चारित्र गुण की विभाव पर्याय। ये चारित्र गुण क्या होता है? जैसे ज्ञान गुण है जीव का, वैसे एक चारित्र गुण है। उसमें जैसे देखो, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। और पानी अग्नि के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है? गर्म होता है। ये गर्म होने का भी पानी की योग्यता है, क्योंकि हम एस्बेस्टस रखेंगे वो गर्म नहीं हो रहा है। अग्नि के संयोग में गर्म होने की भी पानी की योग्यता है, तभी वो पानी गर्म हो रहा है, ख्याल है ना। तो गर्म अवस्था है, अवस्था में गर्म है, फिर भी स्वभाव शीतल है। ऐसे हमारा जो चारित्र गुण है उसका कार्य क्या है? विभाव है, योग्यता क्या है? यहाँ राग द्वेष चल रहे हैं, परंतु स्वभाव क्या है? वीतराग यानी यहाँ राग और द्वेष कुछ नहीं है, ऐसी आत्मा की शुद्ध अवस्था जो भगवान में होती है, अरिहंतों में होती है। हम अरिहंतों को और सिद्धों को क्यों नमस्कार करते हैं? हम इतनी पूजा क्यों करते हैं? उनकी मूर्तियां क्यों बनाई है? उनका नाम क्यों लेते हैं सुबह नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं? क्योंकि उन्होंने पूर्ण वीतरागता और पूर्ण ये जो सर्वज्ञता वो प्रकट की है, इसलिए हम उनको वंदन करते हैं। तो ये हमारा स्वभाव है वीतरागता। और अभी क्या हो रहे हैं? राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। हमने कभी वीतरागता प्राप्त नहीं की। जब तक राग द्वेष के परिणाम है तब तक हर समय कर्म का बंध हो रहा है। तो क्या हम पुण्य करते हुए भी कर्म का बंध होता है? हाँ होता है। और पाप करते समय तब भी नहीं होता है। अरे तो पुण्य और पाप के अलावा कुछ होता है क्या कि जो हम कर्म के बंध से रहित हो जाए? ख्याल है, हम पुण्य करते हैं तो भी कर्म का बंध होता है, कितने? आठों। और पाप करते हैं तो भी आठों। तो इसमें से छूटने का रास्ता कोई होना चाहिए, क्यों भाई? तो क्या होना चाहिए कि ऐसा पुण्य और पाप को छोड़कर अन्य कोई ऐसा भाव होना चाहिए कि जो करने पर हमें कर्म का बंध रुकता चला जाएगा। ये एक साथ एक झटके से पूरा कर्म बंध नहीं रुकता। जैसे हमारे पास एक भली मोटी टंकी है, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई है, उसमें पांच नलों में से पानी अंदर आता है और नीचे के लेवल में पांच नलों में से बाहर बहता है। जितना आता है उतना ही बहता है। तो बोलो अभी कब टंकी खाली हो जाएगी? हाँ बोलो बे, जितना फुल पानी है जितना आता है उतना ही चला जाता है, तो टंकी कब खाली हो जाएगी? यानी आने वाला कि जाने वाला? आने वाला बंद करना चाहिए। तो आने वाले पांच के पांच एक साथ नहीं बंद हो गए, तो क्रम से बंद होगी। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों के द्वारा कर्म का ग्रहण चल रहा। मिथ्यात्व तो मिथ्या भ्रांति, खोटी कल्पना। दूसरा है अविरति, यानी जो कोई यहाँ पाप वादी के परिणाम चल रहे हैं उसमें पुण्य पाप सब समझ लेना। प्रमाद, कौन सा प्रमाद चल रहा है? अपने स्वरूप में लीन नहीं, वही प्रमाद है। कषाय और योग, अभी इसकी चर्चा हो चुकी है, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे दोबारा, हम नया विषय लेना चाहते हैं। तो इनके द्वारा हर समय कर्म आते हैं और पुराने बंधे हुए जिनका काल पूरा होता है, क्योंकि बंधने के बाद कुछ काल तक रहते हैं और फिर निकल जाते हैं, तो वो निकल चले जाते हैं। तो जितना आते हैं उतना ही चला जाता है और हमारा स्टॉक हमेशा ही बना रहता है। तो इसमें से छूटने का मार्ग क्या है? एक तो जो आने वाला है वो एक एक बंद करते चले जाते, और जो जाने वाला है ना उसके जो बड़े कर दो, उसके साइज नलों के। तो जो आने वाले बंद कर देते हैं, जो आ रहा है उसको हम कहेंगे आश्रम, और जो रेगुलर जा रहा है वो ऑर्डिनरी निर्जरा, उसको हम उदय कहते, उसको निर्जरा नहीं कहते, उदय कहते। क्यों? क्योंकि वो जितना आता है उतना जाता है, तो उसको निर्जरा कहने से कुछ लाभ नहीं है। अब क्या करना है? आने वाले को रोकेंगे और जो जाने वाले तो अधिक मात्रा में चले जाएंगे। तो आने वाले को रोक दिया तो हम कहेंगे ये कर्म का आना कुछ रुक गया है, कुछ मात्रा में रुकता है, एक साथ सभी कर्म नहीं रुकते। तो फिर हम कहेंगे ये संवर शुरू हो गया उसका। और जो ऑलरेडी है वो अधिक मात्रा में चले जाएंगे तो हम उसको कहेंगे निर्जरा, ऐसी निर्जरा सम्यक दर्शन हुए बिना कभी भी नहीं होती। कितना भी शुभ भाव करे मिथ्या दृष्टि जीव, उसको क्या लगता है हम तो इंद्रियों को रोक रहे हैं, इंद्रियों पर जिसको कहते हैं रुंधाए लोग कषाय, वो नहीं चले, उसको इंद्रिय निरोध नहीं कहते। हमें इच्छा तो बहुत हो रही है पर हमने रोक रखी है। शास्त्र की भाषा हमको पढ़ने को नहीं आती है ना, तो इच्छा उत्पन्न ही नहीं होना इसको इंद्रिय निरोध, इच्छा निरोध कहते हैं। और हमने क्या मान लेता है, नहीं नहीं हमारे तो रोज खाने पीने की इच्छा होती है, आज हम नहीं खाएंगे तो हमने इच्छा का निरोध किया, ये बात नहीं है। ऐसा इच्छा का निरोध, ऐसा संवर कब प्रकट होता है, जब आत्मा की अनुभूति होती है तभी, जिसको हम कहेंगे सम्यक दर्शन होता है तभी ऐसी बात होती है, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है। और हम जो साधना स्वाध्याय आदि करते हैं तो वो कैसे प्रकट करना, इसके लिए हमारा सारा प्रयत्न है, सारा स्वाध्याय। तो अभी हम जो देख रहे थे कि ये जीव के राग द्वेष के परिणाम हर समय चल रहे हैं, अभी शुद्ध भाव उसको कभी प्रकट ही नहीं हुआ है, तब तक उसको निरंतर एक समय छूटे बिना भी निरंतर उसका बंध होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ परिणमन चारित्र गुण का शुभ या अशुभ रूप सब चलता है। हमें कितनी बातें, ऐसा नहीं हमारे हमने कोई शुभ अशुभ भाव नहीं किया ऐसा लगता है, परंतु वो चलता रहता है, जो हमारे भी ख्याल में ना आए ऐसे भी होता है। आपकी भाषा में कहना है तो सबकॉन्शियस माइंड में भी ये बातें शुभ अशुभ परिणाम चलते रहते हैं। तो इनके कारण से कर्म का बंध हर समय चलता रहता है, इसीलिए कहे निरंतर नींद में हो, बेहोश हो, अभी इतनी क्या बात, विग्रह गति में भी, वो विग्रह गति क्या है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। जो एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीवों के नाम मालूम है कौन कौन से प्रकार के? हाँ बेन बोलो, एकेंद्रीय मालूम है कौन कौन से होते हैं? हाँ, जिनको एक स्पर्शन इंद्रिय, हाँ वनस्पति का एक है, जो हमें वनस्पति दिखाई देती है वो तो शरीर है, वहां जीव भी है, वहां पर पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, ये जो है एकेंद्रीय जीव है। तो इन जीवों में भी वहां क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते होंगे कि नहीं होंगे? समीर बोलो। पुण्य भी होता होगा और पाप भी होता होगा कि अकेले पाप होता होगा? दोनों। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, वो क्या पाप करते बिचारे, है ना? तो वहां का जीव एकेंद्रीय जीव दोबारा एकेंद्रीय में ही जन्मता है, तो पुण्य करके जन्मता है कि पाप करके? पाप। और कोई एकेंद्रीय जीव वहां से मरकर मनुष्य भी हो सकता है, क्यों? पुण्य, उसको हम संकलेश विशुद्धि कहते हैं, वहां पुण्य पाप। हमें तो पुण्य किसी क्रिया में ही लगता है, पुण्य और पाप ये भावों में होता है, शरीर की क्रिया उससे भिन्न है। तीन बातें एट ए टाइम होती है, एक ज्ञान का कार्य हमारा हर समय चल रहा है, चारित्र गुण में पुण्य या पाप हर समय चल रहा है, उसको शुभ शुभ भाव कहो कुछ भी कहो, और तीसरी बात होती है शरीर की क्रिया। तो हम क्या मानते हैं, ये शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं, ख्याल है ना? ये तीनों में हमको डिफरेंशिएट करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो जानना है और डिफरेंशिएट करना है, अपना स्वरूप निश्चित करना है, ये सब ज्ञान में बातें चलेगी। हम क्या मानते हैं, कुछ शरीर की क्रिया करकर हमें धर्म होगा, परंतु धर्म किसको कहते हैं? वीतरागता को। जब शुभ अशुभ भाव छूटकर शुद्ध भाव आत्मा में एकाग्रता होगी, आत्मा का अतीन्द्रिय अनुभव होगा, तब हम कहेंगे इसको शुद्ध भाव की शुरुआत हुई, बिगिनिंग हुई, अभी पूर्णता होने में टाइम है। तो उसमें क्या किया, उसने डिफरेंशिएट किया किसमें किसमें, एक शरीर की क्रिया जो यहीं पर है, ये सारी बातें सुपर इम्पोज है ना, यहाँ एक जीव है और अनंत कर्म परमाणु, अनंत शरीर के परमाणु भी है, तो शरीर की क्रिया भिन्न है, राग द्वेष के परिणाम मेरे में है परंतु मेरा स्वरूप नहीं है, और ये ज्ञान जो है वो मेरा शुद्ध स्वभाव है। ये तीनों ही बातों को हमको जानना है और वे अलग अलग है, इतना ही स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना है। हम क्या करना चाहते हैं, शरीर की कोई क्रिया करके हम धर्म करता है कर सकते मानते, दूसरी बात ये हमें पुण्य करने से धर्म होगा मानते हैं। तो धर्म क्या है, जीव का स्वभाव है ज्ञान और वीतरागता, वही धर्म है। तो हम ज्ञान स्वरूप में अपने को अनुभव करते रहे तो ये आत्मा का अनुभव प्रकट होगा। हम क्या करते हैं, ये सबको मिलाकर खिचड़ी कर देते हैं उसकी, है ना? इसको बहिरात्मा कहा है, इसको मिथ्या दृष्टि कहा है। तो वो मिथ्या पर जाने के लिए क्या करना, जो जिसका है उसको उसका स्वीकार करो और कुछ नहीं करना है। पहली में पहली स्टेज ये है, श्रद्धा के लेवल पर उसको स्वीकार करना है, अभिप्राय के लेवल पर स्वीकार करना है। हम पहले में पहले किसी अन्य चीज करके हम मान लेते हमने धर्म किया। बचपन में हम ये ऐसे ही मानते थे, हम यात्रा में जाके आए, बहुत धर्म किया, हमने दान दिया, हमने बहुत धर्म किया, तो ये तो सारी शुभ अशुभ क्रियाएं या पुण्य शरीर के परिणाम। परंतु हम ये इसको अपने से भिन्न नहीं जानते मानते थे, है ना। तो हमें ये क्या यहाँ देखना है कि हर समय जीव के कुछ न कुछ परिणाम चल रहे हैं, तो उसको कर्म का बंध अवश्य होगा। कर्म का बंध हुआ है तो कालांतर से कितने, कभी कभी तो अनेक भवों के बाद, करोड़ों भवों के बाद उसका फल मिलेगा। हम क्या देखते हैं, अभी हमने कोई किसी का बुरा नहीं किया है, फिर हमको ऐसे संयोग क्यों प्रतिकूल लगता है ना? तो उसका उत्तर है पूर्व भोग। और अभी तो हम पुण्य कर रहे हैं, इसका फल आगे भोगोगे। तो क्या इसी में रहना चाहते हो? क्योंकि ये कभी पुण्य से पुण्य, पुण्य से पुण्य करते करते मोक्ष जाने वाला नहीं है। पुण्य का भी लिमिटेड पीरियड होती है अंतर्मूर्त, वो चेंज होकर पाप, कुछ ना कुछ बीच में पाप परिणाम हो, बुद्धिपूर्वक हो अबुद्धिपूर्वक, कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस, आता ही है बीच में। और ये बंध तो निरंतर चलता ही रहता है। तो यहाँ हम यही देख रहे थे कि नींद में भी बंध होता है, ये एकेंद्रियों को भी होता है, द्विंद्रियों को भी होता है, पुण्य पाप का बंध चल रहा है, तो ये तो विग्रह गति में भी होता है। हाँ बोलिए। आपका कहना है वही तो मैं बोलती हूँ कि ये तो जीव है। आप पहले आपने सुना नहीं है, जो जीव है द्रव्य वो क्या है, तो गुणों का समूह है, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और उसका परिणमन चल रहा है। तो जहाँ चारित्र गुण है वहां उसका क्या परिणमन हो रहा है अभी? वो एकेंद्रिय, वो समय दृष्टि तो नहीं हो सकते, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव ही अपने स्वरूप का जो कोई उपदेश सुनकर मन के द्वारा उसके ऊपर उपदेश को विचार करके फिर समय दर्शन में आत्मा की अनुभूति कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। तब तक वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। उनके अनंतानुबंधी आदि चारों कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, और उनके क्रोध मान माया लोग, इनमें भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में क्रोध मान माया लोग का परिवर्तन होता रहता है। और वहां तो जिसका अभ्यास है वो समझेंगे, कृष्ण आदि तीन लेशा ही चलती है, यानी उनके मेजोरिटी तो संकलेश परिणाम ही चलते रहते हैं। वहां दुख है वो भोगते रहते हैं। ये कोमा में जो जीव है वो दुखी है कि सुखी है? नो नॉलेज। आप अभी अनुमान करो, हम देखते हैं किसी को, हम डिस्पेंसरी में किसी का ड्रेसिंग कर रही हूं, तो क्या होता है, कभी कभी उसको चक्कर आ जाते हैं और वो क्या होता है, बेहोश होता है। अरे वो तो बेहोश हो तो वो तो ठीक है, वो देखते देखते माँ भी बेहोश हो जाती है, तो पहले हमको माँ का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, आप बाहर बैठो, हम बच्चे को ट्रीटमेंट देंगे, है ना? क्यों? ये दुख की इतनी परिसीमा होती कि वो बेहोश हो जाता है, यानी वो दुखी है ना कि सुखी है? बेहोशी में वहां उसके दुख तो चल रहा है वहां पर, तो उसको एक्सटर्नली आप उसके कोई देख नहीं सकते, उसकी कोई रिएक्शन नहीं दे सकते, उसके कोई जो मोटर जो है ना, जैसे आपने उसको टच किया है कुछ ऐसे की, तो जो पैरालाइज्ड है, पैरालाइज्ड पर्सन, वो उसकी मोटर रिएक्शन नहीं होती, परंतु वो सेंसेशन है उसको, वो जानता है, और जानता है तो वहां अंदर दुख भी है। देखो पैरालाइज्ड है, वहां मक्खी बैठी है, वो उसको अंदर से वो नहीं सुहाता है और वो उसको हटाना चाहता है। हम आप जैसे क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, वो मक्खी उड़ जाएगी, या कोई चुभता है, कोई चीज चुभ रही है, तो हम वहां से हाथ हटाएंगे, वो हटा नहीं सकता। क्या उसको दुख है कि नहीं है? अभी हम कहेंगे उसके मसल्स वगैरह जो कोई शरीर की योग्यता से शरीर वहां नहीं हटा, परंतु उस जीव की इच्छा है ना वहां से हट जाए, तो वहां वो दुखी है। वहां भी उसके क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हर समय होते रहते हैं। इसके लिए थोड़ा शुरू से अभ्यास हो जाएगा ना, तो ये बातें आपको, क्योंकि ये वन प्लस वन टू, टू प्लस टू, ऐसा ये सब है। एक से हम पढ़ना चालू करते हैं तो ये सभी बातें आपको सहज ख्याल में आ गया। ऐसी इतनी आसान है, बच्चा भी समझा ऐसा है।
जब अनकॉन्शियस होते हैं तभी बॉडी खुदकर निश्चय चेतन बदल का होता है ना, और तो अंदर वही आत्मा का क्या होता?
देखो देखो देखो, आपका कहना है अनकॉन्शियस होते तो बॉडी अचेतन होती है, तो अभी पुद्गल है कि नहीं बॉडी? अभी बॉडी क्या है? पुद्गल है। अभी चेतन है कि अचेतन है? अभी डेड है कि लिविंग है? देखो देखो हम नहीं, अभी मैं बताती हूँ। मैं जीव हूँ, जीव का लक्षण क्या है? जानना, देखना। और पुद्गल का मैटर क्या है? ये क्या है? मैटर है, ये कुछ नहीं जानता देखता। अभी हम देख रहे, कोई यहाँ हम जिसको कहते हम बोल रहे, अभी यहाँ जीव मर जाए, मर जाए ने निकल जाए तो क्या रह जाता है? बॉडी। तो वो बॉडी कुछ जानती है कि नहीं जानती? नहीं जानती, यानी बॉडी शुरू से ही नहीं जानती थी। और जानने का कार्य कौन कर रहा था? जीव। अब बॉडी को हम क्या कहते हैं? ये सजीव प्राणी है और ये निर्जीव प्राणी है। जैसे यहाँ कोई लिविंग बीइंग था, हम समझते हैं। अभी यहाँ कोई क्या किसी का उदाहरण ले लेंगे, हम छोटा कोई प्राणी है, चूहा लेते हैं, तो चूहा हम ये ना, ये सजीव है, यानी क्या है? वहां बॉडी भी है और आत्मा भी है, और जानने का कार्य वो आत्मा कर रही है, जीव कर रहा है। अभी वो डेड हो गया हम कहते हैं, तो क्या वहां शरीर तो पूरा का पूरा है वहां पर, तो उसमें क्या ऐसी चीज थी कि वो अभी नो मोर? तो हम कहेंगे वो जीव निकल गया, उसके प्राण निकल गए। तो बॉडी पहले भी बॉडी जानने का कार्य नहीं कर रही थी, जीव ही जानने का कार्य कर रहा था, और अभी तो बॉडी तो वहीं पड़ी है। यही दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि बॉडी कुछ नहीं जानती है। अनकॉन्शियस अवस्था में भी जीव की ज्ञान की हीनता हुई है, तो बाहर से हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि यहाँ जानने का कार्य चल रहा है कि नहीं है। तो उस समय भी राग द्वेष के परिणाम उस जीव के शुरू ही रहते हैं, उस समय भी उसका कर्म का बंध चलता ही है। अब ये अनकॉन्शियस से भी आगे चलकर हम बात करने वाले यहाँ पर कि जीव यहाँ मर जाता है, मरते ही वो कितने समय में दूसरे भव में जाता है, तो जो जाने के लिए जो कोई ट्रांजिट है उसका पीरियड, उसको कहेंगे विग्रह गति। ये चार गति के अलावा है, ये कोई गति नहीं है। जैसे मनुष्य गति, पिर्यंच गति, देव गति और नरक गति है, ये ऐसी कोई गति नहीं है, ये गमन है। वो जीव जा रहा है एक जगह से मरकर अन्यत्र। हाँ, ये ट्रांजिट पीरियड कितना होता है उसी की बात हम देख रहे थे। वो ट्रांजिट पीरियड या तो एक समय हो सकता है, या दो समय, या तीन समय, या चौथे समय में पहुंच जाता ही है, उससे ज्यादा समय नहीं लगते। और समय कितना छोटा है हमने देखा था। ऐसा कभी नहीं होता कि अभी क्या है, अभी ट्रैफिक जाम हो गया है, अभी वहां जन्मने के स्थान में अभी नो वेकेंसी, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि हर समय में इस विश्व में अनंत जीव मरते हैं, हर समय। क्योंकि कोई वनस्पति काय का है, कोई पृथ्वी काय का है, अनंत जीव है, हर समय में अनंत मरते हैं, हर समय में अनंत जन्मते हैं। क्योंकि किसी का मरने का समय है, किसी का उत्पन्न होने का समय है, और कितने ही जीव ये ट्रांजिट में पड़े रहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं अभी वो क्या क्या होता है उनका। तो ये विग्रह किसको कहते हैं वो हम देखेंगे। यानी मरण होने के पश्चात जीव नया शरीर धारण करने के लिए अन्य गति में भ्रमण करता है, भ्रमण यानी निकल जाता है। तो इसके एक कुछ रूल्स है। जैसे आप शतरंज खेलते हैं तो उसमें हाथी कैसे चलता है? आड़ा या ऐसा, तिरछा नहीं जा सकता। और ऊंट वो तिरछा चलेगा, है ना? ऐसे ही यहाँ जो मरने के बाद, अभी हम चाहे जैसा आड़ा तिड़ा उल्टा पुल्टा कुछ भी करें, परंतु मरण के बाद ये शरीर यहाँ छूट गया है और उसके अन्य अन्य कुछ कर्मों का उदय मिट गया है, तो वो सीधे ही गमन करेगा। या तो ये ऐसा सीधा ऊपर चला जाएगा, या फिर नीचे चला जाएगा, या पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, चार दिशा, ये चार और ऊपर नीचे छह दिशा, इसी में ही गमन होता है, अन्यत्र गमन नहीं होता। आप कहेंगे उसको यहां से यहां अगर जन्म लेना है तो एक समय में पहुंच जाता है बिना मोड़ के, उसको टर्न लेने की जरूरत नहीं है। पर यहां से यहां जाकर वहां जन्मना है ना कोने में, तो ऐसा तिरछा नहीं जा सकता, वो कितना भी नजदीक हो उसको स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा अप और फिर वहां, या ऐसे भी जा सकता है आड़ा फिर ऊपर चला जाएगा। यानी उसको वन राइट एंगल टर्न लेना पड़ेगा, 90 डिग्रीज में उसको मुड़ना पड़ेगा, उसको कहेंगे मोड़, उसका वो वहां बेंड लेता है ना, वहां टर्न लेता है। अब यदि उस कोने में जाना है तो क्या करेगा, ऐसा जाएगा ऊपर, फिर ऐसा चले जाएगा और फिर वहां चले जाएगा। कितने उसने मोड़ लिए, यहां एक और वहां दो। इस हॉल में थ्री डायमेंशनल है, कहीं भी जाना हो उसको कहीं भी, तो दो मोड़ के एक्स्ट्रा तीसरा मोड़ नहीं लगेगा। आप कहेंगे वहां जाना हो तो फिर वहां से वहां जाना पड़ेगा, नहीं, फिर यहां से ऊपर जाएगा, सीधा जाएगा और एक टर्न लेगा। आप कहेंगे यहां पीछे जाना है तो ऊपर जाएगा, या जो कोई अगर इसी लेवल पर है, अभी इसी लेवल पर होगा, ऐसा जाएगा और वहां पहुंच जाएगा, तो उसको एक मोड़ ही नहीं है। तो कोई भी अगर क्यूब जो है, क्यूबिकल कोई वस्तु है, तो उसमें कहीं से भी कहीं पर जाने के लिए दो मोड़ से ज्यादा मोड़ नहीं लेने पड़ते। यही बात यहां बताई है। देखो ये एक सतह, एक पेपर जैसे अगर प्लेस है, यहां उसको इस यहां से यहां जन्मना है तो एक ही सीधी लाइन में चला जाएगा और वहां जन्म लेगा, और यहां एक कॉर्नर में जन्मना है तो यहां से पहले सीधा जाएगा फिर एक टर्न लेगा और फिर उसको एक टर्न से ने एक विग्रह लिया, उसने एक मोड़ लिया, वहां पहुंच गया। तो यहां से यहां जाने के लिए एक समय, जब जब मोड़ लेता है, टर्न लेता है, उसके पहले एक समय और टर्न लेने के बाद ये दूसरा समय। दूसरे समय में वहां जाके शरीर धारण करता है, धारण करता है, वहां के पुद्गल परमाणु को ग्रहण शुरू हो जाता है। अब ये तो एक सतह, एक लेवल पर बात हुई। अब यहां क्यूबिकल होगा कोई, तो जैसे हमने यहां समझाया है, पहले ऊपर चला गया, फिर राइट एंगल में ऐसा आया और फिर अंदर की ओर चला गया। तो यदि क्यूबिकल होता लोकाकाश तो उसको दो मोड़ इनअप होते, उसके लिए तीन समय लगते। अब लोकाकाश की फिगर आपको सबको मालूम है, नहीं मालूम, ये ऐसा आपने बहुत जगह है ना, उसमें हाथ भी देखा होगा, हाथ भी तो अंदर कुछ नहीं होता, वो तो एक हमने एक सिंबल बनाया। ये लोकाकाश जो हम ऐसे देखते, ये पूर्व पश्चिम, उसके जो सामने का फ्रंट व्यू। परंतु लोकाकाश एक्चुअल कैसा है, जो हम फ्रंट व्यू यहां देखते, यहां ऊपर एक राजू है, ब्रह्म स्वर्ग के पास पांच राजू है, मध्य लोक में एक राजू है, नीचे सात राजू है और ऐसे 14 राजू है। तो ये तो फ्रंट व्यू है उसका, परंतु उसके ऐसी डेप्थ सर्व जगह सात राजू है। ये लोकाकाश किसको कहते मालूम है आपको, नहीं मालूम? आप में से किसी को पता है, राजेश भाई? नहीं मालूम। देखो जो हम विश्व कहते, यूनिवर्स जो कुछ है वो क्या है, तो एक सबसे बड़ा द्रव्य है आकाश द्रव्य, स्पेस। और वो स्पेस बहुत अनंत 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 प्रदेशी ऐसी है, उसके बीचों बीच सेंटर में ये जो लोकाकाश नाम की ये जो ऐसी जो हमने स्पेस दिखा, ये भी स्पेस ही है, परंतु इसी स्पेस में, इतने ही स्पेस में अन्य सभी द्रव्य रहते हैं। कौन से अन्य सभी द्रव्य? तो अनंत जीव इसी स्पेस में रहते हैं, अनंतानंत पुद्गल रहते हैं, पूरा एक लोकाकाश जैसा उतने ही आकार वाला एक धर्म द्रव्य है, उतने ही आकार वाला एक बड़ा अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य तो पूर्ण है, ये लोकाकाश और बाकी का अलोकाकाश मिलकर एक अखंड आकाश द्रव्य है। और फिर लोकाकाश के एक एक पॉइंट पर, हम स्पेस पॉइंट कहेंगे उसको, इसको प्रदेश कहते हैं, तो एक एक स्पेस पॉइंट पर, एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है, वो भी असंख्यात हो जाते हैं। ऐसे हिप उसके ऐसी अगर दिखेगी, तो बाहर तो ओनली आकाश, और लोकाकाश वाली जो स्पेस है उस स्पेस में सभी द्रव्य, इसको कहेंगे लोकाकाश। तो ये लोकाकाश के बाहर कोई अन्य द्रव्य नहीं आकाश के अलावा। तो सभी जीव कहां रहते हैं? लोकाकाश के अंदर। तभी जीव कहीं से भी मरकर कहीं से भी जाएगा, कहां पर भी, कहां पर है ने? जैसे उसने कर्म बांधे हैं, वो निश्चित कहां जन्म लेना है वो उसके परिणाम के अनुसार हो जाता है। ऐसा नहीं कि अभी तो मर गया, अभी कहां जगह है, फिर वहां कैसे जाओ, उसको कौन बताता होगा, कौन गाइड करता होगा, कौन एंट्री देगा होगा, उसको वीसा वीसा पासपोर्ट कुछ निकालना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कुछ नहीं, परिणामों के अनुसार सब बुकिंग होता है।
परिणाम ऐसे करेंगे तो हम भी बुकिंग करा सकते
हैं।
परिणाम ऐसे करेंगे अभी,
हाँ
आपके बता रहे
हैं,
तो हम बुकिंग करा सकते
हैं। कहाँ का करना है?
मक्षत के मार्ग पे जाने का।
मार्ग कहाँ है? ऐसा सीधा जाएगा कि आधा टेढ़ा जाएगा? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहीं अन्यत्र नहीं है। हाँ क्या है बोलो, आपके पीछे मोक्ष क्या है मालूम नहीं?
हाँ
वो किसकी दशा है? आत्मा की दशा किसमें होगी? कसिद्धशिला में होगी। जीव की अभी बंद दशा है, राग द्वेष वाली दशा जीव की है। हमारे परिणाम हमारे में ना, क्या शरीर में है, क्या कर्म में है? जीव की राग द्वेष वाली दशा चल रही है। जीव पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ हो जाता है, तो उसकी पूर्ण शुद्ध दशा ही उसकी मोक्ष अवस्था है। मोक्ष किसी प्लेस का नाम नहीं है। हाँ मुक्त जीव वहां चले जाते हैं तो हम कहेंगे वो मोक्ष चले गए। मोक्ष कहाँ है? ऊपर, जहां बंद है वही मुक्ति होगी कि नहीं? किसी को जेल में रखा है अमेरिका के, और उसको मुक्त कसा कहा करना इंडिया में? अरे जहां बंधा है वहीं से मुक्त होगा कि नहीं होगा? तो हम बंधे हैं अपने भावों से, मिथ्यात्व राग द्वेष से, और बंध से मुक्ति होनी है तो क्या वो यहीं पर जो मिथ्यात्व राग द्वेष चल रहे हैं उसका अभाव हो जाएगा तो यहीं पर मुक्त अवस्था प्रकट होगी? उसके लिए ये सब इतना झमेला क्यों? क्योंकि हम झमेले के बिना जानते नहीं ना। तुम भिन्न हो, पुद्गल भिन्न हो, तो नहीं समझता है। फिर और जरा डिफिकल्ट कर बताए तो फिर समझेगा। नहीं मालूम आपको, एक ऐसा ही था आदमी, उसको लगा कि अभी हम कुछ ब्रह्म विद्या सीखे, यानी आत्मा का अनुभव करें। तो उस गांव में एक बूढ़ा विद्वान था कोई, तो उसके पास गया कि गुरुजी मुझे ब्रह्म विद्या आप सिखाना, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। तो उसने बोला अरे तुम तो आत्मा हो, ये सब जानने वाले देखने वाले तुम तो हो, अनुभव करो, उसमें क्या बात है? ये ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी अन्य गुरु के पास खोजनी है, गुरु की खोज में जाना है। तो वो चला गया ढूंढते ढूंढते, काशी में पहुंच गया गंगा के किनारे, वहां किसी का मठ था, वहां पहुंच गया। महाराज मैं आपके पास आया हूं, मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, आत्मा का अनुभव करना है। कहां से आया? अमुक अमुक गांव से। तो वहां कोई नहीं मिला तुझे? हाँ वो ऐसे ऐसे वो पंडित जी है वहां, उन्होंने ऐसा बताया था, परंतु वो ऐसे थोड़े आत्मा का अनुभव होता है, मुझे आप कुछ समझाओ। अच्छा रह जाओ यहाँ पर, 12 साल मेरी सेवा चाकरी करो। तो गुरु से विद्या धारण करनी थी ना, उसने गुरु तो बना दिया। अब तो ये तो सेवा चाकरी करने लगा, उसके घर के सारे काम ये वो सब 12 साल बीत गए। तो फिर उसने बोला अभी नहीं, अभी तुमको मेरे और गुरु के पास जाना पड़ेगा। फिर उसने और उसके दूसरे गुरु का नाम बताया, वहां चले जाओ तुम। फिर वहां चला गया, उसने बोला तुम्हें मेरे पास 12 साल और सेवा चाकरी करनी पड़ेगी। फिर उसकी 12 साल सेवा चाकरी की। फिर उसने बोला अब ये मेरा और कोई तीसरा गुरु उसके पास चले जा। वहां भी 12 साल उसने सेवा चाकरी की, 36 साल बीत गए। तो अभी तो नहीं, आपको मेरे गुरु के पास जाना पड़ेगा। कहाँ है आपके गुरु? वो अमुक अमुक गांव में। अरे उसने तो पहले दिन मुझे कहा था कि तू ही आत्मा है, तू परमात्मा स्वरूप है और तुझे अपने आत्मा का अनुभव हो सकता है। तो यही बात, और मैंने 36 साल बिताए। हाँ क्या करे, तू पहले मानता नहीं था मैं। सहज बात होती है तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ कोई डॉक्टर है तो उसको पता होगा, ये हमारे हिंदुस्तान में तो चलता है, प्राइवेट प्रैक्टिस या कोई फैमिली प्रैक्टिस करते हैं, हम बता देते हैं इसको कुछ जरूरत नहीं है, मेडिसिन की दवा जरूरत नहीं है। तो ऐसे थोड़ी मानेगा वो, फिर चला जाएगा किसी बड़े हॉस्पिटल। پھر سارے انویسٹیگیشن ہو گئے, سب کچھ ہوگا, سب کر کے یہ اتنا سارا دن مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا, اس میں ابھی میں کیا کروں. اتنے دن تو بیت جاتے ہیں تو وہ تو سیلف کیور ہوتے بھی ہے کتنے بیماریاں. تو کہتے دیکھو یعنی اس کو اتنا سارا کچھ کرے تو کیا جیسا لگتا ہے, اس کو اگر بتاتے ہیں یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہونے والا ہے دو دن میں, تو اس کو بھروسہ نہیں ہے. اس کو کوئی انجیکشن دے, کوئی کچھ کرے تو یہاں ہے, یہ اچھا ہے. ایسے ہی اس کا وشواس نہیں ہے. مول میں مول بات یہ ہے, یہ سب سے سرل بات ہے, کیونکہ ہم دوسرے کا کچھ کر ہی نہیں سکتے, پرنتو ہم نے مانا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے. شریر کا کچھ نہیں کر سکتے, پھر مانا ہے کچھ کریا کر سکتے, اور اس کریا سے میرے کو دھرم ہوگا ایسا بھی مانتے, اور اس کریا میں ہی الجھتے, اور پھر ہم ایسے بھی روتے کہ کیوں نہیں مجھے کچھ پراپت ہو رہا ہے. سب سے سلبھ مارگ ہے اپنے کو ہی سمجھنا ہے. کچھ سادھن چاہیے, سادھن آپ کے پاس ہے گیان کی پریائے, تو گیان سے اپنے کو ہی سمجھنا ہے. تو پھر یہ سمجھنا کہ نہیں سمجھنا, ہم یہ سب رکھ دیں گے. ہاں رکھنا ہے, سمجھنے کے بعد رکھ دو, کیونکہ ابھی سمجھے نہیں نا. انادی سے جو متھیاتو جو کوئی مانیتا بھری پڑی ہے تو وہ انادی کی مانیتا ہے, تو سچی مانیتا کر لو, سچا تھا تو سن لو. سننے کے بعد بھی کرنا تو یہی ہے, پستک رکھ کے اپنے آتما کا انوبھو کرنا ہے. پستک پڑھتے پڑھتے نہیں ہونے والا, کب رکھنا ہے؟ سمجھنے کے بعد. جیسے ہمیں ندی پار کرنی ہے تو یہاں کوئی برج ویج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کار ہے ہمارے پاس, تو ناؤ میں سے جانا پڑے گا. تو ناؤ میں بیٹھنا کہ نہیں بیٹھنا؟ بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بعد پیلتے میں نہیں جانا پڑے گا, نہیں جا سکتے. تو بیٹھنے کے بعد ناؤ سے اترنا کہ نہیں اترنا؟ کب اترنا؟ ہاں بیچ میں نہیں اترنا, پرنتو جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے پہلے ہمیں پتا ہے ہمیں یہاں بیٹھنا ہے اور وہ کنارہ آنے پر اترنا ہے. آپ کہیں گے اترنا ہی ہے تو ہم چڑھے کیوں؟ ایک بات کیا صحیح ہے, پہلے تو شردا میں لیا ہے کہ مجھے یہاں چڑھ کے پھر وہاں اترنا ہے, ہے نا؟ تو اترنا ہے تو چڑھنا کیوں, ایسا ہم نہیں سوچ سکتے. دوسری بات, اگر اترنا ہے تو کہیں بھی اتر جائے وہ بھی نہیں چلے. تو ایسا ہی پنیہ کو چھوڑنا ہے, کب؟ آتما انوبھو کرتے ہیں, آتما انوبھو کرنے کے لیے پنیہ کو بھی چھوڑ کر آتما میں جانا ہے, آتما کا انوبھو کرنا ہے, شدھ بھاو پرکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے پنیہ چھوڑنا پڑے گا. کہاں پہلے میں پہلے ابھیپرائے میں لینا, ہم کہاں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ پروتی میں سے. جیسے ناؤ چھوڑ دی ہے, چھوڑنی ہے, ہم ناؤ میں بیٹھے, کسی نے پڑھے ہم کو بتایا آپ کو ناؤ چھوڑنی پڑے گی وہاں جانے پر, تو ہم نے اتنا ہی سنا کہ آپ کو ناؤ چھوڑنی ہے, تو ہم نے کیا کیا؟ تبھی ناؤ چھوڑ دی, اتر گئے پانی میں, تو ڈوب جاؤ گے. ایسے ہی پنیہ کو پہلے میں پہلے ابھیپرائے میں چھوڑنے یوگیہ ماننا تھا. پہلے تو ہم کرتے تھے, ابھی ایسا سنا تو چھوڑ دیا, تو کیا ہو گیا؟ پاپ میں چلے جاؤ گے. ہمیں تو شدھ بھاؤ پرکٹ کرنا ہے, کیسے پرکٹ کرنا ہے اس کا پورا مارگ پہلے ہم کو سمجھنا ہے. اور یہ کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے, نہ کچھ کرنا نہیں ہے وہاں پر, یہ تو تتوں کی بات ہے. وہ سمجھ کر سب پورا سوچ میں چلے گا, وچاروں میں چلے گا, وچاروں میں چلتے چلتے سہج آتما انوبھو ہوگا. صحیح جیسے وہ تالے والے کے پاس جاتے ہیں نا ہم چابی تیار کرنے, وہ گھستا رہتا ہے اور جب صحیح ہو جاتا ہے تو تالا کھل جاتا ہے. ایسے ہی تتو وچار کرتے کرتے صحیح نرنے ہوتے ہی آتما انوبھو ہو جاتا ہے, اس کے لیے اور کچھ نہیں کرنا پڑتا. کوئی پریکٹیکل ہے ایسا بیٹھنا پڑے گا, ایسا دھیان کرنا پڑے گا, کھینچ کر اندر, ایسے کوئی کھینچاؤ نہیں ہوتا ہے, سہج سہج ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اتنی ساری باتیں یہ وستار سے یا شارٹ میں بھی ہم جو سیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی سچائی کا پتا چلے. شارٹ میں بتا دیتے ہیں تو سچ نہیں لگتا ہے, اور کھول کر بتاتے ہیں, اور کھول کر بتائیں گے, یہ تو جناگم تو بہت بڑا ہے. جتنی ہم وستار سے پڑھیں گے اتنی ہمیں اس میں دھڑتا بھی آتی ہے اور اس کے گہرائی سے سوکشمتا سے وہ بات سمجھ میں بھی آتی رہتی ہے. اب یہ وگرہ لوگی کے تھوڑا ہم نام دیکھ کے پھر چلیں گے آگے. تو ہم نے دیکھا تھا جیو جب مرتا ہے یہاں سے کیا کیا لے جاتا ہے بھائی. ہاں ہمارے پیچھے بھائی صاحب بیٹھے ہیں نا, ہمیں نشچت کرنا ہے نا, तो जीव मरता है तो यहां से क्या क्या साथ में ले जाता है? कुछ भी नहीं। तो इतना सारा डॉलर पैसा सब कमाया क्या करता है? छोड़ के जाता है बच्चों के लिए, कुछ तो ले जाता होगा, कर्म ले जाता है, कर्म शरीर और तेजस शरीर जिसको कहते हैं, जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। कोई यहां मर गया तो जाते हुए काश फोड़कर नहीं जाता, वो सीधा इस वे से थ्रू एंड थ्रू सूक्ष्म परिणाम है ना, कल देखा ना सूक्ष्म स्कंद। तो तेजस शरीर कारमान शरीर इतना सूक्ष्म है, तो किसी भी फुल बॉक्स में रख दो तो भी वो जीव तो निकल जाएगा वहां से। तो यहां जो हम देख रहे थे कि यहां से जीव कुछ नहीं ले जाता, ये सारी संपत्ति यहां सब छोड़ के जाने वाला है। वो कमाने के लिए जो कोई शुभ अशुभ परिणाम किए हैं उससे जो कर्म बंधे हैं वो साथ में चले जाते हैं, जीव और कर्म दोनों चले जाते हैं। क्यों गमन करते हैं? जीव कर्म को ले जाता है कि कर्म जीव को ले जाता है? बोलो बे। हाँ हाँ, कर्म जीव को ले जाता है। आप क्या कहते हैं बेन? जीव कर्म को ले जाता है ना। हाँ, अभी नक्की करना पड़ेगा। कल आपने पेज नंबर 8 पर देखा था, क्या देखा था? इसमें देखा था, कल सीखा था, ये कल सीखी हुई बात है। हाँ बोलो बे। कल आपने कार लाई थी कि कार ने आपको लाया था, याद करो ना जरा। हाँ, बहुत अच्छा। दोनों अपनी अपनी योग्यता से जाते हैं, साथ में जाते हैं, एट ए टाइम सबका कार्य होता है। हम क्या करें, कर्म हमको ले गया, ऐसा नहीं है, ख्याल है ना। तो यहाँ हम देखते हैं सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में जाता है तो उसको कहते हैं इशु गति या रुजु गति। एक समय में जीव पहुंचता है जहां जन्म लेना है। जब हम जन्म कहते हैं तो उसका अर्थ है शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करके वो प्रोसेस चालू हो जाता है शरीर बनाने का। जन्म है वो हॉस्पिटल में 9 महीने के बाद जन्म होता है, उसकी बात नहीं है, ख्याल है ना। फर्स्ट समय जो है उसका जब शरीर धारण करता है तो उसको कहेंगे जन्म। तो यहां से यहां पहुंचा कोई एक ही समय में, यहां मरा और वहीं पर उत्पन्न हुआ, यहां मरा और नीचे इसी ठीक नीचे नरक में उत्पन्न हुआ, उसी प्लेस में जरा भी इधर उधर नहीं चलेगा, क्योंकि आकाश की ये श्रेणी कहलाती है। ऐसे प्रत्येक पंक्तियां हैं, एक एक प्रदेश वाली, ऐसे थोड़ा भी ऐसा होगा तो सीधा जाके फिर वो मुड़कर वहां चला जाए। तो वो होती है इशु गति, जो सीधी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे या पूर्व या पश्चिम दक्षिण उत्तर होती है। उसको अकेले ऊपर ही जाती है, ऐसी बात नहीं, यहां से सीधा वहां चला जाएगा पूर्व या पश्चिम दिशा में, तो भी हम उसको इशु गति कहेंगे, रुजु गति कहेंगे। दूसरी है पाणी मुक्ता। पाणी मुक्ता का अर्थ है एक मोड़, सीधा गया, एक राइट एंगल से मोड़ लिया उसने और फिर वहां उसने जन्म लिया। तो यहां से यहां और यहां से यहां समय 2, मोड़ 1। दूसरे समय में वो शरीर ग्रहण करने का कार्य शुरू करता। यहां कोई शरीर ग्रहण नहीं किया था, यहां जाते ही उसी समय शरीर ग्रहण करता है, यानी बिना शरीर का एक समय रहा। एक मोड़ लिए ना, एक मोड़ यानी पाणी मुक्ता गति। समय कितने लगे पहुंचने में? 2 समय। पहले समय में शरीर ग्रहण नहीं था, दूसरे समय में शरीर ग्रहण किया। तीसरा है लांगलिका गति। लांगलिका गति हमने देखी थी, वैसे ऐसे कोई भी यहां बीच में कहीं पर उसको जाना है तो उसने 2 मोड़ लिए हैं। तो 2 मोड़ लिए हैं पहुंचने के लिए, 3 समय। ये जो एक एक दंड है ना, इसको दंड कहेंगे, ये एक समय, ये दूसरा समय, वैसे वहां पर एक समय, 2 समय और तीसरे समय में पहुंच जाता है। मोड़ 2 लिए, 2 टर्न लिए उसने, तो उसको कहेंगे लांगलिका गति। उसके समय 3, 2 समय तक शरीर नहीं था, तीसरे समय में शरीर ग्रहण किया। और चौथी है गोमूत्रिका गति, जो हमने यहां देखा था। कोई मान लेते हैं ये लोकाकाश के इस एंड तक कोई जीव है और यहां से उसको यहां जन्मना है, तो स्ट्रेट लाइन में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि अलोकाकाश में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्यों के समूह को वहां जहां रहते उसी को लोकाकाश कहा था। यानी लोकाकाश के बाहर कोई ना जीव है, ना पुद्गल है, ना कुछ है। बेन, लोकाकाश के बाहर अंधेरा होगा कि उजेला?
तो
کیا ہوگا اندھیرا کے اجالا لوک کہو لوکاکاش کہو ایک ہی بات ہے
لوکاکاش کے اندر کی بات
باہر
باہر
لوک کے باہر اندھیرا ہے کیا اجالا ہاں اندھیرا اندھیرا ہی کس کی پریا ہے جہاں پرمانو ہے وہاں اندھیرا اجالا ہوگا نا تو وہاں پرمانو ہی نہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی جیو ہے مان لیتے وایو کا ایک ہے یا کوئی بھی پرتھوی کا ایک اور اس کو یہاں باہر سے تو جا نہیں سکتا
تو اتر دے
تو وہ کیا کرے گا یہ سمجھا نا اندھیرا اجالا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ لوکاکاش کے باہر کوئی پودگل نہیں ہے پودگل سبھی لوکاکاش میں رہتے ہیں ویسے جیو بھی لوکاکاش کے باہر ایک بھی جیو نہیں ہے تو اس جیو کو اندر آنا پڑے گا جیسے یہاں لکھا دیکھو آپ میری پستک نہیں دیکھ سکو یہ لوکاکاش ایسے نیچے سات راجو ہے یہاں سے یہاں تو سیدھا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تو لوکاکاش کے باہر کی اسپیس ہے تو پہلے اس کو اندر اس بھاگ میں آنا پڑے گا پھر اوپر چلا جائے گا جو ایک راجو والی جو ایسی ہے نا ترسنا والی تو سینٹر میں ہے وہ ہو سکتا ہے باجو سے بھی چلا جائے اس کی کوئی بات نہیں ہے تو پہلے ایسا اندر آئے گا پھر سیدھا اوپر چلا جائے گا بیچ والے ایک راجو والا جو پارٹ ہے اس میں سے اوپر چلا جائے گا پھر وہاں اس نے ایک موڑ لیا اور اس کو اندر جانا ہے اور ایک موڑ لیا تو میکسیمم کتنے ایک دو اور تین موڑ میں پہنچ ہی جاتا ہے جس کو چار سمے لگتے اس سے ادھک کسی بھی جیو کو سمے ادھک نہیں لگتے اور یہ چار سمے والے جیو ایک اندریوں میں ہی ہو سکتے انیتر نہیں کیوں کیونکہ جو ترس جیو ہے وہ ترس نالی میں رہتے ہیں یہ ترس نالی کیا ہے اوپر سے دیکھے تو ایک راجو ہے ایک راجو ہے ایسے نیچے کے یہاں تک چودہ راجو ہائٹ والی اس کو ترس نالی کہتے ہیں جس کے اندر ترس جیو رہتے ہیں ستھاور جیو سروتر رہتے ترس نالی میں بھی اور باہر بھی تو یہ جو ترس جیو ہے ان کو کہیں انیتر اتپن ہونا ہے تو وہ تو سینٹر میں ہی ہے تو ان کے تیسرا موڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہاں کوئی باہر رہنے والے جو ایک کیندری جیو ہے انہیں میں یہ تین موڈ ہو سکتے ہیں ایک کیندری مر کر ایک کیندری میں جانے والے انی میں نہیں اس کو کہتے ہیں وگرہ گتی اس کے یہ چار الگ الگ نام ہیں اپنا ابھی سمے ہو چکا ہے ابھی اس میں اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہیں اس کی باتیں ہم کریں گے دوپہر میں بولو چوبیسوں بھگوان کی جائے